गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। पृष्ठ संख्या 95। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस? जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा लेकर, क्षुधा पिपाशा पिपाशा, क्या खाए क्या पिए? माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पंक्षी कुछ न छूट पाए उससे। गेहूं, उसकी भूख का काफला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं, जो गेहूं के लिए। बेचारे गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकताएं मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है, किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव और में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानव मानव बनाश। जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों की तरजीह दी, किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव और में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानव मानव बनास। जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानव वृत्तियों को तरजीह दी, यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाव खाव कर रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी, टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामनियां गेहूं के उखल और चक्की में कुट पीस रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल का बनाया ढोल और उसकी सींग की बनाई तुरही, मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े। बांस से उसे लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बनाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, अब वह उच्छ्वासित हुआ सिर्फ इसीलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से, उगते सूरज की शनै शनै प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरण से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, आसमान से। आसमान में जब बादल उमड़े, तब उसने अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मनमोह को नाच उठने के लिए लचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। पृष्ठ संख्या 95। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का स्थान और मस्तिष्क का उससे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस से उसके पेट पर विजय की घोषणा हुई। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंद रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम और संगीत बंधा हुआ और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था और आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी। याद था कि उसे पैर मिट्टी पर है, किंतु धीरे धीरे वह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, जिसका जो पेट की क्षुधा अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धून रहा है, खेतों में गुलाब रो रहा है, बगीचों में, दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है, मुड़ सकता है? यह महायात्रा आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा, और क्या नवीन संतुलन चीर स्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दुहर कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे। अब गुलाब गेहूं की विजय चीर विजय। अब नए मानव की यह नहीं नई आकांक्षा हो। क्या यह संभव है? पृष्ठ संख्या 96। बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया कि मानव में यह चीर बुभुक्षा क्यों है, गेहूं का गेहूंत्व क्या है। हम जान गए हैं यह गेहूंत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधे की बोलियों में संग्रहित बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की जुताई कुड़ाई गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई? हम पृथ्वी और आकाश में उन तत्वों को सीधे ग्रहण क्यों न करें? यह तो अनहोनी बात, उटोपिया उटोपिया। हाँ, यह तो अनहोनी बात, उटोपिया तक तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन के समस्याओं पर ध्यान दिया, यह हस्तामलवक सिद्ध होकर रहेगी, और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव क्या सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत कह ही देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए, बीज खाद सिंचाई जुदाई के ऐसे तरीके निकलने ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। प्रचुर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, असभ्य थी, अभक्ष्य थी, जिसकी अकाय शरीर थे, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी, जिसके दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने की तनिक भी झिझक नहीं थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत ही दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करता चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे इसके लिए क्या उपाय? अपनी प्रवृत्तियों में भी वश में करने के लिए आज मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। पृष्ठ संख्या 97। इंद्रियों के संयमन और वृत्तियों के उन्नयन का संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने आए हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन गिरते जा रहे हैं। इसीलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। कामनाओं की स्थूल वासनाओं के क्षेत्र के से ऊपर उठकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म हो जा रही है, वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप में रक्त पीती है, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही है। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया, मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बनाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार किया करेंगे। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सुगनी फुदक रही, चहक रही, नित्य गीत आनंद उछाह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आंखों से गुलाब झांक रहे। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय बन जाए, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए वहां अलौकिक स्वर्गीय दृश्य, इसी लोक में अपनी इसी मिट्टी की पृथ्वी पर ही। शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर।